सभी डांस करते हुए देख रही थी। रश्मि जानती थी कि ये होटल सुमित का है, लेकिन राधिका को इस बात का पता नहीं था। तभी एंजल चिड़चिड़ाहट से बोली, ये क्या डिंपल, तुमने तो कहा था कि ये शहर का सबसे मशहूर होटल है और यहाँ की सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन तुम मुझे किस चीप होटल में ले आई हो? यहाँ पर कितना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है, भला इतना लाउड म्यूज़िक कौन सुनता है? ये म्यूज़िक बहुत ही परेशान करने वाला है। क्योंकि आस्था और रौनक देहाती गाने बजा रही थीं, जो शहर के लोगों को बहुत कम पसंद आ रहे थे। गाना चल रहा था, तेरी आँखियाँ का यो काजल, मन करे से गोरी घायल, तू सहज सहज पा धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल हो, मैनू पल 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 याद तेरी तड़पावे से, हाय तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से हो। इस तरह का गाना चल रहा था, जिससे एंजल और डिंपल दोनों ही परेशान हो रही थीं। तभी डिंपल एंजल की ओर देखकर बेफिक्री से बोली, आप टेंशन मत लीजिए एंजल दीदी, मैं इन लोगों को अभी सबक सिखा कर आती हूँ। लगता है कोई गांव के गवार यहाँ आकर घुस आए हैं और इस तरह से हल्ला काट रहे हैं, मैं अभी जाकर उन्हें सबक सिखा कर आती हूँ। ये बोलकर डिंपल गुस्से से उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसे एंजल के सामने काफ़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। वहीं आस्था और रौनक दोनों ही उस जगह को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझकर खूब मज़े कर रही थीं। हालांकि सही मायनों में वो प्रॉपर्टी परोक्ष रूप से आस्था की ही थी, क्योंकि आस्था कोई आम लड़की नहीं थी, वो अरमान सिंघानिया की पत्नी थी। लेकिन फिलहाल डिंपल को यही लग रहा था कि गांव के कुछ लोग इस तरह से होटल में घुस आए हैं और इस तरह से देहाती गाने बजा रहे हैं, इसलिए वो सीधा वहां पहुंची। और सीधा जाकर उसने आस्था और रौनक जो जिस गाने पर डांस कर रही थी उस वक्त बज रहा था गाना, ताऊ हट्चा ना चंदे जी भर के, वो कॉलम उठाकर नीचे पटक दिया। और रौनक और आस्था अब दोनों ही हैरानी से डिंपल की ओर देखने लगी थीं। वहीं अविनाश भी थोड़ा हैरान हो गया था। अविनाश भी बहुत देर से आस्था और रौनक को देख रहा था और साथ ही साथ खुश भी हो रहा था। ना जाने क्यों आस्था को देखकर उसे अजीब सी खुशी मिल रही थी, लेकिन अब इस तरह से डिंपल के वहां जाने पर अविनाश के चेहरे पर भी चिंता के भाव आ गए थे। वो भी घूर कर डिंपल को देखने लगा था। वहीं उस वक्त आस्था और रौनक जो पूरी तरह से मस्ती में डूबी हुई थीं और देहाती गानों पर मस्ती से ठुमके लगा रही थीं, अब जैसे ही डिंपल ने वहां आकर इस तरह से उनका कॉलम पटक दिया तो वो दोनों बल्कि चारों घूर कर डिंपल को देखने लगे थे। वहीं रौनक आगे बढ़ी और डिंपल की ओर देखकर गुस्से से बोली, ए लड़की कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमारे स्पेस में आने की और हमारी पार्टी को इस तरह से डिस्ट्रॉय करने की? तब डिंपल दांत भींचकर रौनक से बोली, गवार लड़की, ये क्या तुमने अपना गांव का खुला मैदान समझ रखा है जो यूं जंगली की तरह यहां इस तरह से गाने बजाकर डांस कर रही हो? क्या करोगी तुम चारों? ये क्या तरीका हुआ इस तरह से यहां पर शोर शराबा करने का? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये एक फेमस और ब्रांडेड होटल है? यहां पर इस तरह का बिहेवियर करते हुए क्या तुम्हें इतनी सी भी अक्ल नहीं है? अरे तुम लोग यहां पर गलती से घुस आई हो, इस होटल में इस तरह से बर्ताव करने की तुम्हारी औकात भी है? डिंपल बड़ी ही बदतमीजी से उन चारों से बात कर रही थी। वहीं रश्मि अब डिंपल की ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो डिंपल के सामने जाकर खड़ी हो गई और तमतमाते हुए बोली, ए लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी छोटी बहन से बात करने की? और लिहाज से तुम इसे जंगली कह रही हो? जंगली तो तुम हो, तुम बिना परमिशन के हमारे एरिया में घुस आई हो और इस तरह की चीप हरकत कर रही हो, और अगर तुम्हें हमारा वॉल्यूम बढ़ाने से हमारे शोर से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो तुम हमें आकर बता सकती थी ना, हम वॉल्यूम कम कर लेते, सिंपल। लेकिन ये क्या तरीका हुआ, तुमने आकर हमारा पूरा कॉलम ही तोड़ दिया। अब रश्मि की बात सुनकर डिंपल अपने दोनों हाथों की तालियां बजाने लगी थी और डिंपल अपना घमंडी अंदाज दिखाते हुए बोली, मुझे तो लगा था तुम चारों जंगलियों में कोई ना कोई तो समझदार होगी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम चारों के चारों किसी पागलखाने से छूटकर यहां आई हो जो यहां आकर इस तरह से देहाती गानों पर थिरक रही हो। अगर तुम्हें नाचने गाने का इतना ही शौक है तो सड़कों पर जाकर क्यों नहीं नाचती हो? जाकर वहां पर तुम्हें चार पैसे भी मिल जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इस होटल में घुसने किसने दिया। कहीं ना कहीं डिंपल को तो उस वक्त अपने अमीर होने का घमंड था, साथ ही साथ वो एंजल पर अपना इंप्रेशन जमाना चाहती थी, तो इसीलिए वो रश्मि की बेइज्जती कर रही थी। अब आस्था के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करने लायक नहीं था। वो अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन रश्मि, राधिका और रौनक की बेइज्जती भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इसीलिए आस्था ने ना आव देखा ना ताव और खींचकर एक जोरदार तमाचा डिंपल के मुंह पर जड़ दिया था और डिंपल का चेहरा एक तरफ झुक गया था। अब जैसे ही डिंपल को चांटा पड़ा, अविनाश जो कि उनकी झड़प देख रहा था और जिस तरह से आस्था ने डिंपल को चांटा मारा, अविनाश ने ये देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी ही शानदार मुस्कुराहट थी। लेकिन अब डिंपल का पारा बढ़ चुका था और वो जल्द ही गुस्से में बौखलाते हुए अपने दोनों हाथों को आगे करके आस्था का गला घोटने के लिए आगे बढ़ने लगी। लेकिन तुरंत रौनक उसके सामने आ गई थी और आस्था को बचाने के लिए रौनक ने डिंपल को जोर का धक्का दे दिया था और चिल्लाते हुए बोली, खबरदार खबरदार, अगर तुमने ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की तो, वरना अभी तो आस्था ने सिर्फ एक ही चांटा मारा है, मैं तो तुझे मार मार के बंदरिया बना दूंगी, समझी तुम? और चलो यहाँ से, चलती फिरती नजर आओ। अब तो डिंपल की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उसके लिए वहां रुके रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। तब तक उन सब की लड़ाई देखकर होटल का मैनेजर भी वहां आ गया था। लेकिन होटल का मैनेजर अच्छी तरह से आस्था को पहचानता था, क्योंकि भले ही सुमित ने सारा स्टाफ चेंज कर दिया था, लेकिन अपने मैनेजर को उसने चेंज नहीं किया था। उसने वहां जाकर जल्दी ही डिंपल को बाहर निकाल दिया था और नाराजगी जताते हुए कहा कि आपको अब हमारे वीआईपी मेहमानों से माफी मांगनी होगी। अब तो डिंपल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। किस तरह से ये दो कौड़ी का मैनेजर आकर उससे माफी मांगने की बजाय उल्टा उन चारों जंगली लड़कियों से माफी मांगने के लिए कह रहा था। आज तो डिंपल की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। डिंपल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो एंजल को कैसे फेस करेगी। एंजल जो कि अब काफी देर से खाने के एरिया में बैठी हुई थी और डिंपल के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब डिंपल नहीं आई तो वो खुद उठकर डिंपल के पास जाने लगी थी। तो उसने देखा डिंपल झुककर चारों से माफी मांग रही थी, क्योंकि मैनेजर ने उसे साफ साफ कहा था कि अगर उसने उसके वीआईपी मेहमानों से माफी नहीं मांगी तो उसे इसके लिए मानहानि का केस कर सकते हैं और उसे लंबा चौड़ा मुआवजा देना होगा। अब डिंपल ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए उसे मजबूरन उन चारों से माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन वो बारी बारी से उन चारों को घूर कर देख रही थी। उसने मन मन में कसम खाई कि अपनी ये बेइज्जती वो किसी भी कीमत पर भूलेगी नहीं, और इस रौनक ने जिसने उसे धक्का दिया है इसे तो वो देख लेगी। लेकिन जैसे ही वो माफी मांगकर वहां से जाने लगी और एंजल को खड़ा हुआ देखा, और एंजल ने डिंपल के सूजे हुए गाल की ओर देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए थे। वो फिक्र जताते हुए बोली, डिंपल ये क्या हुआ तुम्हें और ये सब क्या हो रहा है यहाँ? पर वहीं एंजल ने भी आस्था को देखा और पहली नजर में उसे एंजल काफी अच्छी लगी, क्योंकि एंजल ने काफी नॉर्मल लेकिन पूरे कपड़े पहने थे
और उसी के मुकाबले डिंपल ने केवल एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिसमें उसके जिस्म का काफी हद तक हिस्सा रिवील हो रहा था। लेकिन उसके मुकाबले एंजल काफी अच्छे कपड़ों में वहां मौजूद थी। तभी एंजल ने डिंपल के सूजे हुए गाल की ओर देखकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है डिंपल, क्या हुआ यहाँ पर? तभी डिंपल उन चारों को बारी बारी से घूरते हुए बोली, कुछ नहीं एंजल दीदी, वो ये गवार लड़कियां हैं, हमें इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, आप चलिए यहां से। ये बोलकर डिंपल एक नजर सबकी ओर देखती हुई एंजल को लेकर वहां से जाने लगी थी। वहीं अविनाश, जो कि काफी देर से उन लोगों की लड़ाई देख रहा था और आस्था के चांटा मारने के बाद वो खुश हो गया था, और इससे पहले कि वो एंजल की शक्ल देख पाता तब तक एक वेटर उसका बिल लेकर उसके सामने आ गया था और एंजल का चेहरा उसके सामने से कवर हो गया था, तो इसीलिए वो एंजल को देख नहीं पाया था। वहीं जाते जाते डिंपल एक बार फिर अपनी आदत से बाज नहीं आई और उन सबको उसने एक बार फिर गवार बोल दिया। अब तो रौनक का खून उबलने लगा था और वो गुस्से से राधिका और रश्मि को देखते हुए बोली, ये क्या दीदी, अब आप दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? अगर आप लोगों ने मुझे रोका नहीं होता तो मैं अब तक लाद घूसे की मशीन में उसे अच्छे से धो डालती। जैसे ही रौनक ने ये बोला, रश्मि, राधिका, आस्था, जो अभी थोड़ी देर पहले इन सब इंसिडेंट की वजह से उदासी में थीं, अचानक से खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि जब डिंपल आस्था पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ रही थी और रौनक ने उसे धक्का दिया तब वो और उसको लाद घूसे बरसाने वाली थी, लेकिन तुरंत रश्मि और राधिका ने उसे पीछे से पकड़ लिया था और उसे डिंपल को मारने नहीं दिया था, तो इसीलिए रौनक को अब उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब इस तरह से सबको हंसते हुए देखकर उन चारों का ही मूड अब चील आउट हो चुका था। तब तक वो वेटर भी अविनाश के पास से चला गया था और उसने देखा कि वो हंगामा करने वाली लड़की वहां नहीं है, वो चली गई है, और वो चारों अब एक बार फिर से अपनी मस्ती करने लगी थीं। अविनाश अब जल्दी ही अपना बिल वगैरह पे कर चुका था और फिर वहां से जाने लगा था, लेकिन ठीक उसी वक्त आस्था ने रौनक की ओर देखकर कहा कि मुझे लगता है कि हमें वॉशरूम जाना चाहिए, मैं भी वॉशरूम से होकर आती हूँ। लेकिन तुरंत रश्मि उसे रोकते हुए बोली, नहीं, तुम वॉशरूम भी अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तब आस्था मुंह बनाकर बोली, लेकिन रश्मि दीदी, हम होटल में ही तो हैं, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम जा सकते हैं प्लीज, आप सब हमें बच्चों जैसा ट्रीट करना बंद करें, हम इरिटेट हो रहे हैं। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, रश्मि मुस्कुरा दी, फिर उसका गाल खींचते हुए बोली, अरे बाबा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हारी चौकीदारी करने के लिए तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मेरा मतलब ये था कि मुझे भी वॉशरूम जाना है, ये देखा नहीं तुमने, उस लड़की के चक्कर में देखो मेरा पूरी साड़ी का पल्लू खराब हो गया है। रश्मि की साड़ी पर कुछ खाने के दाग लग गए थे, क्योंकि जिस वक्त अचानक से डिंपल ने आकर हंगामा किया था उस वक्त रश्मि और राधिका कुछ खाना खा रही थी जो उसके कपड़ों पर गिर गया था। तब आस्था ने हाँ का इशारा करके उसे अपने साथ चलने के लिए बोल दिया था। अब जल्दी ही जैसे ही अविनाश वहां से जाने लगा, अविनाश ने एक नज़र उस होटल की ओर देखा और अगले ही पल नम आंखों से बोला, न जाने कहाँ होंगी तुम और कब मिलोगी मुझे। अब जब अविनाश ये लाइन बोल रहा था, ठीक उसी वक्त आस्था और रश्मि उसके पीछे से वॉशरूम में जा रही थी। तब अविनाश जैसे ही बाहर जाने लगा तो उसने सामने एक बुजुर्ग चौकीदार होटल के बाहर खड़ा हुआ देखा था। तब अविनाश के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने होटल स्टाफ के हर एक एम्प्लॉय से, वेटर से, सेफ्टी गार्ड से, मैनेजर से, हर चीज़ हर लोगों से उस लॉकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली थी, लेकिन उसने अभी तक उस चौकीदार काका से कुछ नहीं पूछा था। तब अविनाश थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने उसे चौकीदार काका के सामने खड़ा होकर बोला, अच्छा काका, क्या मैं आपसे कुछ जान सकता हूँ। वो चौकीदार काका काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। चौकीदार काका थोड़ा सा हकला कर बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या काम है। क्योंकि जब से सुमित का होटल ओपन हुआ था तब से वो चौकीदार काका पहले दिन से ही वहां ज्वाइन हुआ था, हालांकि उनकी उम्र काफी हो गई थी और सुमित ने उन्हें आराम करने के लिए भी बोला था, लेकिन उनका ये मानना था कि जब तक उनके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक वो घर पर आराम नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए सुमित उन्हें काफी कम काम करवाया करता था और उनकी पूरी सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया करता था। अब अविनाश का ये पूछने पर वो चौकीदार काका बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या काम है। तब अविनाश उस लॉकेट का फोटो दिखाते हुए बोला, क्या काका, प्लीज आप मुझे बता सकते हैं कि ये लॉकेट पहने कोई लड़की यहाँ आई थी? क्या आप मुझे उसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? क्या आपको कुछ याद है? अब जैसे ही अविनाश ने ये बोला, वो चौकीदार काका कुछ हैरान हो गया था।